नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Knot Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। पाइथन ऑल इन वन फॉर डमीज जॉन सी शोविक और एलन सिंपसन की व्यावहारिक तकनीकी मार्गदर्शिका है। यह एक ही खंड में 7 स्वायत्त लघु पुस्तकों का ढांचा अपनाती है, इसलिए इसका उद्देश्य केवल प्रोग्रामिंग की भाषा सिखाना नहीं बल्कि उसके विविध उपयोगों का नक्शा देना भी है। पुस्तक आरंभिक पाठक को पाइथन की सरल वाक्य रचना, इंडेंटेशन, मॉड्यूल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और विकास परिवेशों से परिचित कराती है। इसके बाद यह डेटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग, रास्पबेरी पाई और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। इसकी शैली उदाहरणों और परियोजनाओं पर आधारित है, जिससे पाठक को कोड के पीछे का उपयोग संदर्भ सहित दिखाई देता है। यह गहरी विशेषज्ञता का एकल विषय ग्रंथ नहीं है, बल्कि पाइथन की बुनियाद और प्रमुख दिशाओं का व्यापक प्रवेश द्वार है। इसलिए इसका मूल्य उस पाठक के लिए अधिक है जो पहले भाषा समझना और फिर अपने अनुकूल विशेष क्षेत्र चुनना चाहता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले 7 लघु पुस्तकों का ढांचा, भाषा से अनुप्रयोग तक क्रमिक विस्तार। पुस्तक की विशिष्ट संरचना 7 लघु पुस्तकों को एक साथ रखती है। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि पाठक को पाइथन सीखने की यात्रा को केवल नियमों की सूची के रूप में नहीं देखना पड़ता। आरंभिक भाग में भाषा के मूल तत्व आते हैं, जबकि आगे के भाग दिखाते हैं कि वही तत्व वास्तविक तकनीकी क्षेत्रों में कैसे काम आते हैं। इस क्रम से वेरिएबल, डेटा प्रकार, शर्तें, लूप और फंक्शन जैसे आधारभूत विचार बाद की परियोजनाओं के लिए उपयोगी उपकरण बनते हैं। पुस्तक का संगठन उन लोगों के लिए अनुकूल है जो पहले व्यापक परिदृश्य समझना चाहते हैं और फिर अपनी रुचि के हिस्से पर लौटकर काम करना चाहते हैं। प्रत्येक खंड अपेक्षाकृत स्वतंत्र होने के कारण इसे संदर्भ सामग्री की तरह भी खोला जा सकता है, हालांकि इस ढांचे की सीमा भी है। अलग अलग परियोजनाओं और संसाधनों के आसपास सामग्री होने से एक निरंतर अत्यंत गहन पाठ्यक्रम जैसा अनुभव हमेशा नहीं बनता। किसी एक क्षेत्र जैसे केवल वेब विकास या केवल मशीन लर्निंग में दक्षता पाने के लिए अतिरिक्त स्रोत आवश्यक होंगे। फिर भी आरंभिक चरण में व्यापकता एक उपयोगी चुनाव है, क्योंकि पाठक को जल्दी पता चलता है कि पाइथन की कौन सी दिशा उसके उद्देश्य के अनुकूल है। दूसरा, पाइथन की बुनियाद में पठनीयता, इंडेंटेशन और मॉड्यूलर सोच। पुस्तक पाइथन को लोकप्रिय बनाने वाले उसके बुनियादी गुणों पर ध्यान देती है, विशेषकर साफ वाक्य रचना और पठनीय कोड पर। पाइथन में इंडेंटेशन केवल सजावट नहीं है, वह कोड के ब्लॉक और नियंत्रण प्रवाह का हिस्सा है। इसलिए सही रिक्त स्थान का अनुशासन पाठक को आरंभ से ही स्पष्ट संरचना लिखना सिखाता है। पुस्तक मॉड्यूल और पैकेज की अवधारणा भी समझाती है। इन्हें समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तविक प्रोग्राम हर सुविधा को शून्य से नहीं बनाते, वे मानक लाइब्रेरी और बाहरी कोड घटकों का उपयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का परिचय भी इसी विस्तारशीलता की दिशा में आता है, जहां डेटा और उससे जुड़े व्यवहार को संगठित इकाइयों में रखा जा सकता है। जेन ऑफ पाइथन जैसी अवधारणाओं का उल्लेख भाषा की उस संस्कृति की ओर संकेत करता है, जिसमें सरलता, स्पष्टता और व्यवहारिकता को महत्व दिया जाता है। यह भाग केवल सिंटैक्स याद कराने के बजाय कोड को पढ़ने योग्य और पुनः उपयोग योग्य बनाने की आदत विकसित करता है। फिर भी पाठक को उदाहरणों को स्वयं टाइप, बदल और डिबग करना चाहिए। बिना सक्रिय अभ्यास के भाषा की सहज दिखने वाली वाक्य रचना भी वास्तविक समस्या समाधान की क्षमता में नहीं बदलेगी। तीसरा, जुपिटर, एनाकोंडा और बीएस कोड के माध्यम से विकास परिवेश की समझ। प्रोग्रामिंग सीखने में भाषा के नियमों के साथ कार्य परिवेश को समझना भी आवश्यक है। पुस्तक जुपिटर नोटबुक, एनाकोंडा और वीएस कोड जैसे प्रचलित साधनों का परिचय देती है। इनका समावेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरंभिक पाठक अक्सर कोड लिखने से अधिक उसे कहां लिखें, कैसे चलाएं और त्रुटि कहां देखें जैसी समस्याओं में अटकते हैं। जुपिटर नोटबुक विशेष रूप से प्रयोग, डेटा विश्लेषण और चरण दर चरण परिणाम देखने के लिए उपयोगी है। इसमें कोड, व्याख्या और आउटपुट एक ही दस्तावेज में रह सकते हैं। एनाकोंडा पैकेज और वातावरण प्रबंधन को अपेक्षाकृत सरल बनाता है, जो डेटा केंद्रित कार्यों में उपयोगी हो सकता है। वीएस कोड अधिक सामान्य संपादक और डिबगिंग कार्य प्रवाह का परिचय देता है। पुस्तक इस प्रकार उपकरणों को लक्ष्य नहीं, सीखने और निर्माण के माध्यम के रूप में रखती है। व्यावहारिक रूप से यह दृष्टि पाठक को इंटरैक्टिव प्रयोग और संगठित प्रोजेक्ट दोनों तरीकों से परिचित कराती है। एक सावधानी यह है कि टूल इंटरफेस और इंस्टॉलेशन निर्देश समय के साथ बदल सकते हैं। अतः पुस्तक के मूल कार्य प्रवाह को समझते हुए वर्तमान आधिकारिक दस्तावेज देखना चाहिए। यह आदत पाठक को किसी एक स्क्रीन या संस्करण पर निर्भर रहने से बचाती है। चौथा, डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग और एआई का परिचय विशेषज्ञता का विकल्प नहीं, पुस्तक पाइथन को डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग और एआई से जोड़कर दिखाती है। यह जोड़ विषय की वास्तविक उपयोगिता को स्पष्ट करता है, क्योंकि पाइथन का प्रयोग डेटा के साथ काम करने, प्रयोग दोहराने और मॉडल आधारित कार्यों में व्यापक है। पाठक को यह समझ मिलती है कि भाषा की बुनियादी संरचनाएं केवल छोटे अभ्यासों के लिए नहीं है। सूचियां, फंक्शन, मॉड्यूल और डेटा को संभालने की क्षमता आगे विश्लेषणात्मक और बुद्धिमान प्रणालियों के आधार बनती है। न्यूरल नेटवर्क बनाने और डेटा का विश्लेषण करने जैसी गतिविधियों का परिचय आधुनिक अनुप्रयोगों की दिशा दिखाता है, लेकिन पुस्तक की व्यापक प्रकृति के कारण इसे सांख्यिकी, मॉडल मूल्यांकन, डेटा गुणवत्ता या एआई नैतिकता का पूर्ण प्रशिक्षण नहीं मानना चाहिए। किसी मॉडल का आउटपुट उपयोगी होने के लिए डेटा की प्रासंगिकता, त्रुटियों, पक्षपात और परीक्षण पद्धति की जांच जरूरी है। इसीलिए पुस्तक का सर्वोत्तम उपयोग यह है कि पाठक इसमें मिले परिचय से अपने अगले अध्ययन का प्रश्न तय करे। जो व्यक्ति डेटा विज्ञान या एआई में जाना चाहता है, उसे इसके बाद गणितीय आधार, डेटा सफाई, विजुअलाइजेशन और मॉडल सत्यापन पर केंद्रित सामग्री पढ़नी होगी। पुस्तक दिशा देती है, अंतिम विशेषज्ञता नहीं। अंत में फिजिकल कंप्यूटिंग, रास्पबेरी पाई और रोबोटिक्स से कोड का भौतिक परिणाम, पुस्तक का एक अलग पक्ष फिजिकल कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स पर उसका ध्यान है। कई आरंभिक पाइथन पुस्तकों में कोड केवल स्क्रीन पर परिणाम देता है, जबकि यह रास्पबेरी पाई और रोबोट संबंधी परियोजनाएं दिखाती है कि सॉफ्टवेयर सेंसर इनपुट, आउटपुट और यांत्रिक क्रियाओं से भी जुड़ सकता है। यह अनुभव प्रोग्रामिंग को अधिक ठोस बनाता है। पाठक समझ सकता है कि किसी निर्देश का अर्थ केवल टेक्स्ट या संख्या बदलना नहीं, बल्कि किसी उपकरण की अवस्था पढ़ना या प्रतिक्रिया उत्पन्न करना भी हो सकता है। लेखक की रोबोटिक्स और एआई पृष्ठभूमि इस विषय चयन को प्रासंगिक बनाती है। साथ ही हार्डवेयर परियोजनाओं की अपनी सीमाएं हैं। इनके लिए अलग उपकरण, संगत घटक, बिजली की व्यवस्था और कभी कभी विशिष्ट बोर्डों की जरूरत होती है। मॉडल और उपलब्ध संसाधनों में बदलाव के कारण मुद्रित निर्देशों को वर्तमान हार्डवेयर दस्तावेज के साथ मिलाना जरूरी है। इसलिए यह खंड हर पाठक के लिए अनिवार्य क्रम नहीं, बल्कि प्रयोगधर्मी मार्ग है। जिनके पास हार्डवेयर नहीं है, वे भी इससे इनपुट, नियंत्रण और स्वचालन की अवधारणाएं समझ सकते हैं। जिनके पास उपकरण है, उनके लिए यह कोड और वास्तविक दुनिया के बीच उपयोगी पुल बन सकता है। निष्कर्ष में, पाइथन ऑल इन वन फॉर डमीज उन आरंभिक पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो प्रोग्रामिंग में नए हैं और यह तय करना चाहते हैं कि पाइथन के माध्यम से वे किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बुनियादी कंप्यूटर उपयोग और ग्राफिकल इंटरफेस की परिचितता अपेक्षित है, लेकिन पूर्व कोडिंग अनुभव अनिवार्य नहीं है। यह पुस्तक उन कामकाजी पेशेवरों, विद्यार्थियों और दूसरी भाषा के प्रोग्रामरों के लिए भी उपयोगी हो सकती है, जिन्हें पाइथन का व्यवस्थित परिचय तथा उसके प्रमुख अनुप्रयोगों का संक्षिप्त मानचित्र चाहिए। इसका व्यावहारिक लाभ भाषा के मूल नियमों को टूल, उदाहरण और परियोजनाओं के साथ जोड़ने में है। पाठक केवल फंक्शन या मॉड्यूल की परिभाषा नहीं देखता, बल्कि यह भी समझता है कि ये आगे डेटा, एआई, वेब कार्य, हार्डवेयर और रोबोटिक्स में क्यों काम आते हैं। समान श्रेणी की अनेक पुस्तकें या तो केवल आरंभिक सिंटैक्स पर रुक जाती है, या एक विशेषज्ञ क्षेत्र में बहुत जल्दी गहराई में चली जाती है। इस पुस्तक का अंतर इसकी 7 भागों वाली व्यापक संरचना है, जो आधार और संभावित अनुप्रयोगों को एक ही खंड में रखती है। इसकी सीमा भी यही व्यापकता है, क्योंकि किसी एक विषय में पेशेवर स्तर की गहराई नहीं मिलती। अतः इसे अंतिम संदर्भ नहीं, बल्कि खोजपरक आधार और उपयोगी डेस्क संदर्भ मानना अधिक यथार्थवादी है। सक्रिय अभ्यास करने वाला पाठक इससे अपनी अगली अधिक केंद्रित सीखने की दिशा स्पष्ट कर सकता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जॉन सी शविच, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।